الحمد لله بنعمته تتم صالحات، لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں ہمارے اپنے نفس کے شر سے بچائے، اور ایک ایک لفظ جو ہمارے دل دماغ اور کانوں پہ آئے وہ ہمارے عمل کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وقال الذین، پارہ نمبر 19 ہے، دورہ قرآن 2024. پچھلے پارے پہ ایک نظر ڈالیں تو بہترین خوبصورت پارہ، جس میں سورت مومنون، سورت نور اور سورت فرقان کی 20 آیتیں ہم نے پڑھی. کامیاب مومن کون ہوتا ہے؟ طیب رزق کے کیا اثرات ہیں انسان کے جسم پہ؟ گھروں میں داخل ہونے کے اصول، ٹیم ورک کے آداب، اور پھر آخر میں فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان. ایک ایک لفظ ہمارے اپنے عمل کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں پیش کیا. آج ہم 19ویں پارے پہ ایک نظر ڈالیں تو پہلی تو بات ہے کہ اس پارے میں بھی یا ایھا الذین آمنو اس سے شروع ہونے والی کوئی بھی ایک آیت نہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، تو ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر کہے سمجھیں، مزاج سمجھیں، ماں کو کیا اچھا لگتا ہے، باپ کو کیا اچھا لگتا ہے، استاد کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا. بس انسان کی اسی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ہمیں پیغام دیا، حق ادا کیا. اب جن کو ماننا ہے وہ مانیں. تو یہاں میرے اس طرف سے عمل کی ایک پہلی بات لکھیے کہ آپ میں سے کچھ لوگ پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں اور کئی بار بار سن چکے، ماشاءاللہ دونوں ہی اللہ کے پیارے چنے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو قرآن کے لیے چنتا ہے. تو جو بھی بات آتی ہے نا اس کو سن کے گھبرایا نہ کریں، خاص طور پہ نئے لوگ. کوئی بات نہیں، آج اللہ نے سنوایا کل عمل بھی ہوگا. کچھ لوگ قرآن سنتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت کچھ ہے جو عمل والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اسی لیے تو جنت کے مختلف درجے رکھے ہیں نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں ہر پکار پہ لبئی کہنے کی توفیق ہو. خاص طور پہ پیچھے سورت نور میں ہم نے دیکھا تھا کہ سمعنا واطعنا، سچے مومنوں کی یہی شان ہوتی ہے. آج کا پارہ تو آپ خواتین کا پارہ ہے اور ہم سب فیملی والوں کا پارہ ہے. آج کا مین تھیم کیا ہے؟ وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، جہاد کبیر اردو میں، اور اگر عربی میں کہہ دوں تو کیا کہ جہادن کبیرہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر ایک امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھاؤ. انشاءاللہ آج جہاں آئے گی ہم وہاں دیکھیں گے کہ جہاد کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج صرف لفظ جہاد کی وجہ سے امت مسلمہ میں کئی مسائل کھڑے ہو گئے. کوئی تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا اور کوئی اس کے سوا کوئی اور بات سننا ہی نہیں چاہتا. تو انشاءاللہ جو بھی توفیق ہوئی، جو بھی میں کر سکی، ابھی چونکہ شروع میں ہی آیت آنے والی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ یہاں بات کریں، کیوں نہ ہم اس آیت پہ بات کریں جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے. نصر من اللہ وفتح قریب کا اس پارے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ پارہ وہ ہے جس میں وہ آیت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اپنے رشتہ داروں کو انذار کرنے کا حکم ملا. سورت شعرا کی وہ آیت آئے گی، وانذر عشیرتک الاقربین. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری محبتوں کا اور ہمارے سارے پیار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارا رشتہ دار. اس بارے میں رشتوں کی بڑی بات ہے. ابھی شروع میں ہی ہم دیکھنے لگ جائیں گے، پھر عباد الرحمن کی خوب صفات میں دیکھیں گے. اور مزے کی بات ہے، گھبرائیے نہیں میری اس بات کو سن کر کہ اس میں سسرال کا بھی ذکر ہے. کچھ لوگ تو سسرال سے بھاگ کر ادھر آتے ہیں اور پتہ چلا کہ سسرال تو قرآن میں. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ خوبصورت رشتے کون سے ہوتے ہیں. یعنی آج پورا پارا پڑھانے میں میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ وہ پارا جو میرے اپنے مزاج سے تعلق رکھتا ہے. قرآن میں پڑھنے کے بعد ہر ایک بتانے والے کا ایک اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی شاکلہ ہوتی ہے نا. تو میری شاکلہ گھر، मेरा घर मेरी जन्नत, क्योंकि अगर हम खवातीन अपने घरों के अंदर अमन नहीं दे सके तो दुनिया को अमन कहाँ देंगे? और वो मर्द जो अपनी बीवियों के साथ अमन का पैगंबर नहीं बनेंगे तो वो दूसरों के साथ क्या बनेंगे? तो मुझे है हुक्म ऐसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज अगर मैं आपको वो बात समझा सकी कि जो कुरान हमसे चाहता है, तो मैं अल्लाह ताला के आगे बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ना भी समझा सकी, फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका तो दिया आपसे बात करने का। लेकिन हकीकत है कि ये सब कुछ इस कुरान को समझने और पढ़ने के बगैर मुमकिन नहीं है। ईमान की ताकत देखें तो रिश्तों को निभाना ये ईमान के बगैर नहीं होता। कोई शौहर अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, और कोई बीवी अपने शौहर को इस बात पे बांध नहीं सकती कि देखो मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती हूँ, तुम मेरे की करो। ये ईमान के साथ होता है। सूरत निसा के शुरू में हमने देखा था कि जो खुतबे निकाह की आयतें हैं उसके अंदर 2 दफा तकवे का जिक्र है। तो ये दिल के तकवे के साथ है। आपका ईमान बढ़ जाए, आपको परवाह भी नहीं कि आपका शौहर देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी सास की, अपने ससुर की खिदमत करेंगी, आप अपनी नंदों के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगी। और इसी तरह से इसके बरक्स दूसरी तरफ भी है। दोनों तरफ जो है ना, अपने मर्द और औरत जो है ना, वो अल्लाह के खौफ से ही जिम्मेदारियां निभाएंगे, और वरना तो कोई किसी को मजबूर नहीं करता। दूसरी चीज है कुरान को फैलाना। आज के इस पूरे पारे में कुरान को फैलाने की बातें हैं, तो लिहाजा इसके लिए भी ईमान चाहिए, और ये कुरान से ही आता है। आप सब माशाल्लाह जो पहली दफा कुरान सुन रहे हैं ना इस वक्त, आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे एक चेंज। अगर आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा था पहले, तर्जमे वाला, दूसरा तो माशाल्लाह हम हर रोज तरावी में सुनते भी हैं, और इसाले सवाब और हसूले सवाब और कुरान के पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। लेकिन अगर आपने कभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा था, तो इस बारे कुरान में पूरा वक्त आने के बाद, इसको अटेंड करने के बाद, एटलीस्ट 10 to 15% आपका प्रेजल होगा। आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। कुछ दालें जल्दी गल जाती हैं, जैसे शायद वो पीली दाल, और कुछ के पूरी रात सोक करनी पड़ती है ना, तो दिल भी ऐसे ही होते हैं। तो अपने लिए ज्यादा परेशान ना हो, बस ये दुआ करें कि आपको अल्लाह सुनता रखे। फिर इसमें इबादुर रहमान बनने के लिए, अभी हम जो सूरज शुरू करने लगे हैं उसी के एंड पे इबादुर रहमान का जिक्र है। वो कौन होते हैं वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों को इबादुर रहमान बना दे, हमारे भाइयों को इबादुर रहमान बना दे, और हम सबको भी अल्लाह की बंदियां बना दे। और इसी के साथ फिर शुरू करते हैं तर्जुमे को, सूरह फुरकान की आयत नंबर 21 से 77, 21 to 77 में क्या अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। दुआ कर लीजिए कि हमारे और हमारे सुनने के बीच में कोई चीज रुकावट ना बने। आइए देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وطوا عتوا كبيرا. كفار کی نیکیوں کا کیا ہونے والا ہے؟ آیت 21 سے 34 رکوع نمبر 3 ہے. یہاں اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بھی ابھرتا ہے، اور ہمارے بچے بھی کبھی کبھی یہ بات پوچھتے ہوں گے कि भाई ये जो इतनी नेकियां करते हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में आप देखते हैं कि बहुत सोशल वर्क भी है, जस्टिस भी है, सफाई भी है, सुथराई भी है, तो क्या इनकी नेकियों को अल्लाह कबूल नहीं करेगा? तो इसका जवाब जरा लेते हैं। और जिन्हें हमारे मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते? और इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा है। लिख लें छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी हैसियत से बड़ा मुतालबा था कि अल्लाह हमें खुद नजर आए। आपने, मैंने आज तक इस मुल्क में रहते हुए ये नहीं कहा कि इस मुल्क का सदर या वजीर खुद आकर कहे कि सुर्ख लाइट पे रुकना है तो मैं रुकूंगी, स्टॉप साइन पे रुकना है तो रुकूंगी। लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर बड़ाई होती है ना, वो कहते हैं अल्लाह बड़ा होगा पर मैं कौन सा कोई छोटा हूँ। ये जुमला देखिएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत सख्त सरकशी कर ली। आओ अब इनको बताएं जरा कि फरिश्ते देखने का शौक है, तुम भी जिब्राइल को अपने सर की आंखों से देखना चाहते हो? तो सुनो, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए खुशी की बात ना होगी, और कहेंगे खुदा करे तुम रोक लिए और बंद कर दिए जाओ। किसी को भी फरिश्ते को देखने का अगर शौक है ना, तो बस इंसान इस दुनिया में और इस दुनिया से जाते जाते एक ही फरिश्ते को देख सकता है। हमारी कह लीजिए कि कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग जो अल्लाह ने करके प्रोग्रामिंग भेजा ना, इंसान बस एक फरिश्ते को देख सकता है और वो मौत का फरिश्ता। ना मैं आप जिब्राइल को देख सकते हैं, ना मिकाइल को देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, तो इनको मैं बता दूंगा कि जब फरिश्ता नजर आएगा, लेकिन मसला ये है कि जब फरिश्ता नजर आता है तो जुबान बंद हो जाती है। आपने कई दफा मरने वालों के करीब कुछ ना कुछ गुफ्तगू बातें सुनी होंगी, अम्मा ये कह रही थी, मेरी माँ ये लेने, मेरी नानी आई हुई है, पिछले याद आते हैं। हो सकता आते हो, दिख रहे होंगे, फरिश्ते दिखते हैं, उसके बाद बंदा बता नहीं सकता कि क्या है। मुराद यह है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। और अब वो बातें जो इन्होंने नेकियों की सूरत में दुनिया में की, और उन्होंने जो जो अमाल किए थे, हमने इनकी तरह भड़ कर इन्हें परागंदा जर्रों की तरह कर दिया। ये जो धूप के अंदर आपको रोशनदान से धूप आती है ना, तो वो येलो पार्टिकल से होते हैं ना, जर्रात, उसकी तरफ इशारा है कि खसो खाशाक की तरह इनकी नेकियों को बहा दिया जाएगा। अलबत्ता इस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। हेलूला, जन्नत में आपको अल्लाह ताला बेहतरीन सोने की जगह देगा, और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, और इस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा, और ये दिन कुफार पर बहुत भारी होगा, और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा। जरा सा सोचिए, है तो ये मुहावरा, लेकिन जरा सा तस्वर में लाएं कि कोई अपने हाथ को चबा रहा है, हाथ काट रहा है। कभी लोग नाखून काटते हैं तो कहते हैं ये एहसास कमतरी की अलामत है, और आज लोग सेल्फ टॉर्चर, तकलीफ देते हैं। कोई बच्ची है तो वो अपने हाथों से कट लगाती है, कोई बाइट्स करता है। यानी आज के दौर का एक बहुत बड़ा डायलेमा बन गया है कि खुदकुशी नहीं भी कर सकते ना, तो चलो खुद को अजियत तो दो, खुद अजियत ही। उस सारे को जहन में रखिए, और असल में अंदाज है हसरत का, अफसोस का, कि देखो ये लोग इस दुनिया में तो सीरियस नहीं हुए थे इस नबी की बात पे, इस कुरान की बात पे, लेकिन वहां क्या होगा, क्या कहेंगे, अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे हाय काश के मैंने रसूलुल्लाह की राह इख्तियार की होती, हाय अफसोस मैं रसूल की इत्तबा करता, उसकी पैरवी करता, हाय अफसोस काश के मैंने फलां का दोस्त ना बनाया होता। दूसरा रिग्रेट कि बुरी दोस्तियां छोड़ दी होती मेरी, वो दोस्तें जो मुझे गलत चीजों पे माइल करती थी, ये देखो ये सुनो, ऐसी अच्छी लग रही हो, क्या गजब की तुम लग रही हो, ये है वो है। अल्लाह करता कि मैं दुनिया में ही इनके इस शर से अपने आप को बचा लेता। अच्छा, तीसरी हसरत देखिएगा, तीसरा नुकता देखिए, दोस्त के बारे में क्या कह रहा है, इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी, और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है, यानी बेवफा है। और रसूल कहेगा कह मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। 3 सेकंड आवाज नहीं आएगी, ये ना सोचिएगा कि आवाज नहीं आ रही, ये आपके मेरे इस जुमले पे गौर का वक्त है। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। दिल गवाही देता है कि सच है। चलिए आगे देखते हैं, और इसी तरह हमने नबी के दुश्मन बास गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफी है। और कुफार ने कहा इस पर कुरान सारे का सारा एक साथ ही क्यों ना उतार दिया गया। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे आपका दिल कवी रखें, हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़ सुनाया। ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे, हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा दलील आपको देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही बदतर मकान वाले, गुमराह तर रास्ते वाले हैं। तो ये थरकू नोट कीजिए, फुरकान 29 का लफ्ज, वकान शैतान लिल इंसानी खजूला, बेवफाई और बेहयाई ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस जुमले को दिल पे लिख लीजिए। पारा नंबर 18 में हमने बेहयाई से मुतल्लिक बातें देखी, यहाँ आपको बेवफाइयां दिख रही हैं। और ये कुरान तो इतना खूबसूरत कुरान है, ये तो इतनी प्यारी किताब है कि इससे पहले कि कुरान को पढ़ा जाए ये हमें पढ़ लेता है। ये जुमला एक रिवॉर्ड का है। जब उसने कुरान पढ़ा, दीन सीखा, तो उसने कहा कि मैं इस कुरान को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मुझे तो लगता है ये कुरान मुझे ही पढ़ लेता है। आप में से कितने लोग इसकी गवाही देते हैं कि जो ही आप यहाँ आकर बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये सारी बातें मेरे लिए हो रही हैं। और अगर बिलफर्ज आप में से कोई मुझे या मैं उसको जानती हूँ ना, तो आप में से आधे लोगों को ये लगेगा मुझे सुना रही है। वो जैसे बाबा जी के पास तवीज लेने जाए ना, तो वो सास को भी वही तवीज देता है जो बहू को देता है। लेकिन हकीकत है फी ही जिक्रुकुम, इस कुरान की महफिल में बैठ के मुझे तो ये लग रहा होता है मैं खुद को सुना रही हूँ, सच मानते। मेरे वहम में भी किसी का ख्याल नहीं होता। कई दफा बाद में मैसेज आता है, आज तो आपने बिल्कुल मेरी बात की। अच्छा भी मुझे तो नहीं उस वक्त अब याद है। अब इस वक्त मैं अगर वो हजारों लोगों को याद करने लग जाऊं तो अल्लाह को कैसे याद करूंगी। लेकिन ये कुरान की खूबी है और ये बहुत प्यारी खूबी है। साइकोलॉजी को पढ़ने और जानने वाले इस जुमले की कदर जानते हैं, क्योंकि आज यही तो मसला है कि लोग हमें जानते नहीं, लोग हमारे से बातें नहीं करते, हमारी दोस्तें हमारी बात नहीं मानती, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, मियाँ जो है टाइम नहीं देते। कुरान आपको टाइम देगा। आप इस कुरान को अपनी तन्हाइयों का साथी बनाए। वो प्यारी सी दुआ के अंतर, जलील कुरान अलअजीम अरबी अकलबी व नूर सदरी व जला हुजनी व जहाब गमी व हमी, तो आज आपने यहाँ से उठने तक ये दुआएं मांगनी है कि अल्लाह इस कुरान को मेरी तन्हाइयों का, मेरी गर्मियों का, मेरी सर्दियों का, मेरी सुबहों का, मेरी शामों का, और मेरे रमजान और मेरे गैर रमजान का साथी बना दे। ये सिर्फ को रमजान में पढ़ने वाली किताब थोड़ी है। आगे देखिए आयत 30 में, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा। ये वही जुमला है जिसपे आपको गौर के लिए 3 सेकंड दिए थे, इतने कीमती वक्त में से अल्लाह के नबी क्यामत के दिन ये जुमला बोलेंगे। उम्मीद सिफारिश की थी, लग शिकायत गई। जिस कौम ने कुरान को पकड़ कर छोड़ा था, और अगर आप देखेंगे ना लफ्ज़ इत्तखज़ू भी है, अब कुछ लोगों को तो अरबी आती है ना, पकड़ना, आखजा युखिज़ू मुआखिजा पकड़ना, और साथ ही आगे महजूर है। इसका एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन किस जुमले में बनता है, मेरी इस कौम ने इसको पकड़ने के बावजूद भी छोड़ा हुआ था। सच है कि नहीं? रातों को मस्जिदें उबल रही होती हैं, कुरान ही पकड़े होते हैं, कुरान ही पढ़ रहे होते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी आवाजों में हमारी उम्मत कुरान पढ़ती है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ रमजान की ये बरकत ही बाकी रहे ना पूरा साल, के इशा की नमाजों में इतना ही रश हो, मगरिब में इतना ही रश हो, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दुश्मनों पर रोकतारी होता है इतने मुसलमानों को देख के। अब ये कुरान महजूरा क्या है, पकड़ कर इसको कैसे छोड़ना, ये मुहावरा है कुरान को तर्क करने का। इब्ने कय्यम रहमहुल्ला ने इसकी बड़ी प्यारी तफसीर की है। मैंने सोचा 20 बातों की बजाय एक ही बात सुना दूं जिसमें सारी बातों का समप है। कहते हैं कि कुरान को छोड़ना क्या है, नंबर एक इसको ना सुनना। पहले लेवल पे कुछ कहते हैं सुनो ही ना, कुछ लोगों को कुरान सुनने से डर लगता, सुनो ही ना, सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा। हालांकि 19वें पारे पे पहुंच गए, अभी तक तो कोई आयत नहीं आई कि नहीं सुनोगे तो बच जाओगे। दूसरी बात, ना इस पर ईमान लाना, इस पर अमल ना करना, इसके हलाल हराम से ना रुकना, और ना ही इसके किसी हुक्म को मानना, और इसको ना हाकिम बनाना यानी झगड़ों में इससे फैसले ना लेना, इस पे गौर व फिक्र ना करना, और इससे शिफा और इलाज ना कराना। अब आप मुझे बताइए, आपके लिए एक स्लाइड बन गई है, बाद में इस पे गौर कीजिएगा। किस पे अमल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें नहीं हूँ। अच्छा, मैं सुनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे ईमान लाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे अमल की कोशिश कर रही हूँ, कोई बात नहीं हो रहा है कुछ हो जाएगा, हलाल हराम से रुकती हूँ, बस आपके लिए एक बेहतरीन क्राइटेरियन बन गया। फेथ इन एक्शन क्या है कि दुनिया में हर अमल करते हुए इसके बदले का यकीन रखना। यही चीज इंसान को सीधा रखती है कि जो भी खाऊंगा वो जिस्म पे चर्बी बन के लगेगा, जो भी अमल करूंगा भुगतना पड़ेगा। बस यही एहसास रखिए। दुनिया में कभी ऐसा हो कि आप जाकर कोई लफ्ज बोल दें और आपकी पकड़ ना हो? अच्छी बुरी बात इंसान के नामे अमाल में तुलती भी है और उसको रखा जाएगा। हर नेक काम करने से पहले अपनी नीयत को परखना, अच्छे दोस्तों की सोहबत इख्तियार करनी है, और कुरान को समझ समझ कर पढ़ना है, और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। आप क्या कहेंगे इस पे? इंशाल्लाह। बोले, जरा डरे हुए क्यों है? इंशाल्लाह। चलिए आगे देखिए, रुकू नंबर 4, 35 से 44, नफ्स परस्ती। ये कौन सी परस्ती होती है? सेल्फ वर्शिप, अपनी पूजा, मंदिर पूजा, दिल पूजा, दुनिया पूजा। किसी ने कहा कितनी पूजाएं हैं तुम्हारी, एक रब को छोड़कर बंदा को फारिग थोड़ी रहता है। फिर कभी नफ्स को पूजता है, कभी मुआशरे को, कभी खानदान को, कभी लोगों को, कभी इसको। तो आइए जरा देखते हैं, इसमें एक बड़ी खूबसूरत आयत आ रही है इस मौजू पे। वलकद आतैना मूसल किताब व जअलना माहु अखाहु हारून वज़ीरा। रुकू नंबर 4, 35 से 44। और बिलाशुबा हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया, और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुटला रहे हैं, फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौमे नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशाने इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है, और आदि और समूदी और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास भी आते जाते हैं जिस पर बुरी बारिश बरसाई गई। कौमे लूत की तरफ इशारा है, पत्थरों की बारिश हुई थी, क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं, और तुम्हें जब भी देखते हैं। अब ये जरा से इसमें देखिए, कल मैंने तذکرہ किया था कि सूरह फुरकान का मेन टॉपिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मजाक है, जिसको अब तौहीने रिसालत कहते हैं, और उसी के नाते कुरान की भी थी कि एक दफा कुरान को ना मानो तो नबी की ना माननी पड़े, और दूसरी तरफ यह है कि नबी को झूठा कर दो ताकि कुरान झूठा हो। आज के दौर में जो भी नबी को कुछ कहे, उनके कार्टून बनाए, हमारे नबी को रंगीला रसूल कहे, उनकी शादियों पे बात करे, उनके लाइफस्टाइल पे बात करे, उनको इस बारे को गौर से सुनना चाहिए, या उनको सुनवा दीजिए कि ये कोई नई बात नहीं तुमने की, तुम हमें चिड़चिड़ाना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो। हालांकि हकीकत यह है कि ये अल्लाह के नबी के सामने भी होता था। मुसलमानों ने क्या करना है? जिहादन कबीरा। खुद ही लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, आग में जलती पे तेल डालेंगे तो और भटकेगा। आज के दौर का ये जिहाद जो शुरू होता है ना, ये इंटेलेक्चुअल जिहाद है। अगर वो कोई गलत चीज लिखते हैं, आप जवाब में गलत लिखिए, उसका रद्द निकाल, यानी मीन के कोई कुरान के खिलाफ बात करता है, आप कुरान की बड़ाई लिखिए, नबी के खिलाफ बात करता है, नबी की सीरत है, एक ग्रुप है जो उठता है और कुरान जलाता है। यूरोप की ये बातें हैं, जिस मुल्क की आप जाके खुद ही देख लें, तो उस पर कई मुसलमान उठे और उन्होंने कहा कि अच्छा जब ये कुरान जलाएगा ना तो हम इतने 100 कुरान लेकर बांटेंगे। दैट इज बेस्ट थिंग। आप क्यों गूंगे शैतान है कि लोग आपका कुरान जलाएं? और एक शख्स ने भरी महफिल में उसी जगह पे जाकर ऐलान किया हुआ था पहले से कि अच्छा तुम कुरान जलाते हो, हम तो रात जलाएंगे। उसने गवर्नमेंट से इजाजत भी ले ली, गवर्नमेंट को देनी पड़ी, क्योंकि वो एक को दे सकते हैं तो दूसरे को देंगे। और जब उसने ऐलान किया कि मैं यहाँ के बाइबल को जलाऊं, तो रात से मुराद बाइबल थी, बाइबल को जलाऊंगा तो सारे ज्यूज और क्रिश्चियन जमा हो गए। क्यों जलाओगे? उसने कहा कि तुम जला सकते हो, मैं भी जलाऊंगा। और बिल आखिर क्या हुआ कि उसने अपने एक हाथ में बाइबल थी और एक में लाइटर था। उसके बाद उसने लाइटर फेंका और बैग में से कुरान निकाल के कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं अल्लाह की उतारी हुई किसी किताब, चले उसमें कितनी अमेंडमेंट हो गई, अच्छी सही बातें भी मौजूद है अंदर। ये अलग बात है कि वो किर्चियां मिल गई हैं अंदर खाने में, तो अब वो किर्चियों वाला जैम तो नहीं अब खाएंगे, लेकिन बहरहाल है। फिर उसने कहा मैंने सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि जितना आपको इस वक्त दुख हो रहा है इतना हम मुसलमानों को होता है, ये कीजिए। खामोश एहतजाज, आपके बच्चों की आवाजें, ट्विटर हैं, मैसेजेस हैं, बेहतरीन तरीके से आज गजा के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? हम उसके लिए खामोश आवाज क्यों नहीं उठाते? कोई नहीं रोकता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी पे बुरी बात ना करें लेकिन अपना हक तो लें। हम जब गलती करते हैं ना, उसमें अल्फाज का इस्तेमाल ठीक नहीं होता। तो बहरहाल यही बातें अल्लाह के नबी आपके ऊपर कहा करते थे क्या? और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं और क्या कहते हैं कि यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। यानी नाउज बिला देखिए, जिस तरह कोई कहता है लो ये इन्होंने देखे अपने आप को, यानी मुझे कोई आके कहते इन्होंने अपना मुंह देखा, पढ़ाने बैठ गई है हमें, कितना डिस्गस्टिंग लगेगा। और एक नबी जो रहमतुल आलमीन है, उसके मुंह पे कहे अच्छा जी इनको अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे। देखिए अपनी स्टबननेस को क्या कह रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं इनकी बातों में आए, इन्होंने तुम्हें बड़ा ही खींचा, बड़ी दफा घर से निकलने का दावत दी, आना बैठना, हम नहीं गए। यानी कभी कभी एक ऐसा पॉइंट ऑफ एक्शन आ जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अपने लिए नोट कीजिए, उनको छोड़ें, आपको कुरान की दावत मिले ना, फौरन दिल में कहा करें इंशाल्लाह आऊंगी, उसको भी कहें कि इंशाल्लाह आऊंगी, ये झूठा भी ना कहे, नीयत कर ले और अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे तौफीक देना मैं आऊँ, एक दिन अल्लाह आपको ले आएगा। और अगर आप उनके जवाब में मुंह भर भर के कहें हम फारिग लोग हैं, तुम्हें तो पता नहीं क्या है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, फिर तौफीक छीनेगी। क्योंकि एक वक्त होता है कि बंदा कहता है मैंने नहीं आना अल्लाह की तरफ, कुरान की तरफ मैंने नहीं आना, और एक वक्त फिर आता है अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें आने ही नहीं देना, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम आओ। तो अगर आप और मैं यहाँ आकर बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम मजीद आगे से आगे बढ़ते जाएं। और क्या कहा कि वो तो कहते हैं कि हम इस पर जमे रहे, वरना इन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये जब अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह रास्ते से भटका हुआ कौन था। और कि आपने इसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है, क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? आपने देखा कभी ये किस मुल्क में रहता है, ये किस शहर में रहता है? कोई नाम सोच लें और शीशा देख लें, ये शीशे में रहता है, आईने में, खुद को आईना दिखाने वाली आयत है, ये है वो आयत जिसके ऊपर इस रुकू का थीम है। क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? यानी आपका ख्याल है ये सुन और समझ रहे हैं, वो तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं, यानी सुन सुन के सुन हो चुके या सुनते ही नहीं। इसमें देखिए 42 आयत में जो जुमला था ना, लौल अन सबरना अलैहा, इसको हाईलाइट कर लें आप भी। जो अलग से चंक निकाल के देती हूँ ना, उसको इसलिए देती हूँ कि आप उसको जरा सा अपनी आयतों में हाईलाइट करें, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई आए ना तो अपने मुसहफ पे उसको हाईलाइट कीजिएगा। ये बातिल पर सब्र कर रहे हैं, तुम हक पे सब्र कर लो। आप देखिए कि दुनिया कोई आसानी से मिलती है? अगर आपको इस वक्त कुरान पढ़ने सुनने समझने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है, या आप अपने दिल पर जबर करके घर से निकल आए, आपने नींद छोड़ी है, आपने अपना आराम छोड़ा, तो अल्लाह आपको एक जो बेहतर बदला दे रहा है। दूसरा ये कि दुनियाले भी तो कर रहे हैं, इस वक्त कितने ही लोग हैं जो गुनाहों के लिए जाग रहे होंगे, तो लिहाजा वो सब्र अच्छा नहीं है जो अल्लाह की रजा के लिए हो, वो सब्र अच्छा नहीं है कि जिसके बाद जन्नत मिल जाए। फिर आगे देखिए 43 फुरकान, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, ये तो एक पूरी एनालॉजी है, क्या तुमने देखा है? ये भी कहने की जरूरत नहीं, बस कह दिया जाता कुछ लोगों ने अपने नफ्स को इलाह बनाया हुआ है, खुदा बनाया, नफ्स को पूछते हैं, वो कहते हैं पैसे के पुजारी, मन पुजारी। और पीछे हमने 13वें पारे की पहली आयत में क्या पढ़ा था, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सू, नफ्स हमारा तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है। आज बहुत गुलगुला है, पूरी दुनिया में होगा लेकिन हमारे मुल्कों में कुछ ज्यादा ही है कि बुरे हुक्मरान, बुरे हुक्मरान, ये आया ये खा गया, वो आया उसने टैक्स लगा दिए, वो आया उसने इन्फ्लेशन बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, उसने लेआउट कर दी, है ना कहानियां। लिखिए जरा आपके ख्याल में आज तक सबसे बुरा हुक्मरान कौन आया? मने तहद इला हवाहो, लिखिए सोचिए कि नफ्स अम्मारा अगर आपका हुक्मरान बन जाए तो कैसे कैसे हुक्म देगा। बुरे से बुरे हुक्मरान के आगे नाम लिखिए नफ्स अम्मारा, मेरा नफ्स, और ये नफ्स को इंसान को कम शर्मिंदा और जलील करता है। और जब दिल ही सनम कदा बन गया तो बाहर के बुत कैसे तोड़ेंगे? अपने अंदर के बुत तोड़िए, बाहर के टूट जाएंगे। सुस्ती का बुत तोड़ के आके बैठ गया ना, खुद पसंदी का बुत टूटेगा तो खुदा पसंदी आ जाएगी। सुस्ती और लिथार्जिक और कंफर्ट जोन का बुत टूटेगा तो आप रमजान के बाद भी अल्लाह के दीन के लिए आते रहेंगे, आप लोगों को जिहाद करेंगे, लोगों के साथ दीन की दावत देने की बातों से लेके जहां अपने बेटे भेजने पड़े मैदाने जंग में भेजेंगे, फखर है, खुशी होगी, क्यों? क्योंकि दिल का बुत जो टूट गया। तो अमल के नुक्ते क्या है, फेथ इन एक्शन, दावते हक में लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, नफ्स परस्त नहीं अल्लाह परस्त बनना है, हालात के मुताबिक हिकमत से बात दूसरों तक पहुंचानी है, लोगों के मजाक उड़ाने और तनकीद की परवाह किए बगैर अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। अगर आपको तनकीद चुभती है तो फिर ये वो आयत है ना कि तुमने नफ्स को खुदा बनाया, समझिए कि आप इसमें हैं। ये एक बहुत ऐसे ऐसे टेस्ट है, किसी ने तारीफ की तो आप चमक के चहक गए, और तनकीद की तो आप कहते हैं मुझसे आज नहीं होता। यानी हाउ मच डू आई वर्शिप माई सेल्फ, आप वो आयत याद भी कर लीजिए ना, सूरह तौबा में हमने बात की थी, मैं आज फिर मिसाल दे देती हूँ आपको। मैं अपना फोन बेचना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ इसको बेच देती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा ये बेचना है, कितने का बेचना है, आप लेंगे कितने का ले? वो कहते हैं मैं $100 का ले लूंगी, मेरे पास चॉइस है, मैं $100 लेके ये फोन उस बंदे को दे के आ जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं, 100 का थोड़ी है ये फोन, 100 में भला आजकल फोन आता है? मैं उठ के जाती हूँ, अच्छा वो दुकान है, मैं उस दुकान पे जाके अपना बेचती हूँ फोन। मैं उस दुकान पे गई तो वहां पहले से एक औरत मेरे ही जैसा फोन खरीद रही थी, दुकानदार से, वो कहते हैं क्यों आए भी आए, ये फोन बेचना है। अब उसको समझ आ गया कि ये फोन है, वो कहते हैं भाजी इधर आइए, उसको सामने तो नहीं बात करनी है ना जिसको बेच रहा है, तो मुझे कहता है कि मैं आपसे ये 200 का ले लूंगा। अब ये 200 का लफ्ज है ना, वो उस औरत के कान में पड़ गया जो अभी यही फोन उधर सौदा कर रही थी, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ गई कि आप 200 का बेच दें। वो सिस्टर आपको एक तरफ बुलाती है, बट मैं कहती है बात सुनी, इनको 200 का ना बेचे, मैं आपसे 300 का ले लूंगी, क्योंकि दुकानदार उसको 400 का दे रहा था। अब आपके पास थर्ड चॉइस आ गई, अकलमंदी क्या है? 100 का, 200 का या 300 का, दैट इज द गेम। अगर मैंने 100 का बेचा तो नुकसान किया अपना, 300 का बेचा तो अच्छा किया। यहाँ पर मैं जब इस दुनिया के बाजार में जाते हैं ना, तो लोग हमें खरीदते हैं, हम पे बोलियां लगती हैं, इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम, और उनकी जाने माले अल्लाह ने कैसे खरीदी, अल्लाह कहते मैं तुम्हें खरीदूंगा, अल्लाह इज द हायर बिडर, सबसे ज्यादा प्राइस अल्लाह मेरी देता है। दूसरा जो बंदा था ना, वो जो बीच वाला, वो दुनिया है, दुनिया में खरीदती है। एक दफा आप अपने आप को जरा लिखिए, आई एम नॉट सोल्ड, तो हर बंदा आपका ग्राहक बन के आएगा। देखिए, शादीशुदा औरत की तरफ कोई रिश्ता निकाह का नहीं डालता ना, इसीलिए वल मोहसिनात कहा, किले में बंद हुई औरत होती है। इसीलिए इस्लाम पसंद ही नहीं करता कि कोई औरत अकेली रहे, क्योंकि हर मर्द के तसव्वुर में आ सकती है, हर घर में आ सकता है, चाहे उसका उधर जोड़ तोड़ दें, उसका उधर जोड़ दें। तो अल्लाह मर्दों को सलामत रखे और बीवियों को भी सलामत रखे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक अल्लाह के बन जाते हैं ना, तो लोग आपसे मायूस हो जाते हैं, शुरू में बहुत तंग करते हैं, देख लें, सोच लें, इधर से रिश्ता तोड़ दो, मैं आपको ज्यादा खुश रखूंगा, हम आपकी बेटी को ज्यादा खुश रखेंगे, हमारे पास गाड़ी भी है, वो भी है, ये भी है, आप जमे रहते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। और ये जो पहला था ना, $100 का ये फोन बेचना, वो था जिसको आ रही था मैंने तहदा इलाहा हो। कुछ लोग अपने हाथों बिक जाते हैं, सुस्तियां, ड्रग एडिक्टेड, शराबी, कबाबी, नशा, यानी वो अपने भी नहीं, वो कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, वो होते हैं, यहाँ इसकी बात है। तो अल्लाह ताला हमें अल्लाह के हाथों में बिकने वाला बना दे। अल्लाह से ज्यादा आपकी कीमत लगाएगा भी कौन, सोचिए आप। अब है वो आयत जिस पे आपके पारे का थीम है, पूरा पारा इस एक आयत और इस रुकू के इर्द गिर्द घूमता है। आइए देखते हैं।